रावलपिंडी में एक प्रोग्राम में हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की को खराज अकीदत पेश किया गया और तफसीलात यहाँ पेश कर रहे हैं इस्लामाबाद से अंस अहमद।
आज उस शख्सियत को
पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में कायम खाना फरहंग में इमाम खुमैनी की बरसी के मौके पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मौजूद मेहमानों और शुरका ने इमाम खुमैनी के सियासी और समाजी खिदमात को सराहा और कहा कि इमाम खुमैनी ने इस्तकबारी कुव्वतों के खिलाफ हक और दीन का अलम बुलंद किया।
मुसलमानों को मुश्तरकात पर इकट्ठा करने में जो रोल अदा किया हमने, ये सरासर इमाम खुमैनी के अफकार, उनके नज़रियात के नतीजे में और उनकी वसीयतें और उनकी रहनुमाई के नतीजे में और बिलाख़स वली अमर मुस्लिमीन हज़रत आयतुल्लाह खामनाई ने जो रहनुमाई दी उसके नतीजे।
तकरीब में मौजूद लोगों ने जहां इमाम खुमैनी की बरसी के मौके पर उनकी सियासी और समाजी काविशों को सराहा, वहीं इस दौर में भी इनकी सोच और इनकलाबी अकवाल पर भी गुफ्तगू की गई।
इमाम खुमैनी जैसे लोग जो हैं उनकी तालीमात कभी रायगा नहीं जाएंगी, वो मशले राह थे नौजवान नस्ल के लिए और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के अंदर भी इमाम की बातों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा।
खाने फरहंग में मुनक्किद तकरीब में जहां इल्मो दानिश से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की, वहीं मुख्तलिफ तबकाए फिक्र के लोगों ने भी शिरकत करते हुए इमाम खुमैनी की जद्दोजहद और उनकी कामयाबियों को सराहा और कहा कि इमाम खुमैनी की जिंदगी उम्मत मुस्लिमा के लिए मशले राह है।
अनस अहमद, सहर आलमी टीवी नेटवर्क, इस्लामाबाद।
नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे साथ अजीम सब्जवारी। खुश आमदीद अर्ज़ करती हूँ अजीम साहब। और यहाँ पर आप हमें ये बताएं कि मसले फ़लस्तीन को हयात नौ जो है इमाम खुमैनी ने अता की एक तरह से, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, मसले फ़लस्तीन के हवाले से इनकलाब इस्लामी के यानी कामयाबी से पहले भी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के अफकार और नज़रियात और जो सियासी बयानात इमाम खुमैनी के वक्तन फवक्तन उस तहरीक के दौरान जो इनकलाब इस्लामी की तहरीक थी आते रहे, उसमें भी मसले फ़लस्तीन के हवाले से इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने काफ़ी जो है वो गुफ्तगू की है। लेकिन हमको याद होगा कि इनकलाब इस्लामी की जो कामयाबी का अरसा है, अगर आप उस पर निगाह दौड़ाएं तो ये वो अरसा है कि जब इसराइल और मिस्र के दरमियान कैंप डेविड मुआहदे की दाग बेल्ट डाली जा रही थी और अगस्त 1978 का वाकया है कि जब मुख्तलिफ तरह से जो है वो अमेरिका ये इस बात का जोर लगा रहा था कि किसी न किसी तरीके से अरबों और इसराइल के दरमियान जो है वो बातचीत हो जाए, और ये जो कैंप डेविड मुआहदा है ये उसकी पहली कड़ी थी, यानी मसले फ़लस्तीन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। और ये उसको ख़त्म करने की जानिब जो पहला कदम था वो मिस्र और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात थे, और इसके लिए उन्होंने पूरी हमाहंगी भी की थी कि तमाम अरब ममालिक के साथ मिलकर उस दौर से ही ये चला आ रहा था जिसका इंकशाफ वक्तन फवक्तन होता रहा है। अभी हाल ही में अमरीकी जो वजारत खारजा है उसने बाज़ ऐसी दस्तावेज़ात जारी की हैं जिनमें ये कहा गया है कि सऊदी हुकूमत ने उस वक्त की और उस वक्त के वज़ीर खारजा ने इस बात का यकीन दिलाया था अमरीकी सफ़ीर को रियाज में कि कैंप डेविड मुआहदे की जो दाग बेल्ट डाली जा रही है हम उसके भरपूर तरीके से हिमायत करते हैं और हामी है कि ये मामला हल हो जाए। तो इससे ज़ाहिर होता है कि मसले फ़लस्तीन को उसी वक्त से दबाने की कोशिश की जा रही थी कि ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और इसको तरजीहात से निकाल दिया जाए, जैसे कि अमली तौर पर आज ऐसा हो चुका है कि बाज़ इस्लामी ममालिक की तरजीहात में मसले फ़लस्तीन सर फहरस्त नहीं, हालांकि इस मामले को सर फहरस्त होना चाहिए था एक इस्लामी मसले के लिहाज से भी और बैतुलमक़दस क़िबला अव्वल के लिहाज से भी। लेकिन हम ये देखते हैं कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जब जैसे ही इनकलाब इस्लामी कामयाब हुआ और जो आपने वक्तन फवक्तन और ख़ास तौर पर इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के फौरन बाद जो अहम तरीन स्टेप लिया कि इस तेहरान में इसराइल के सफारत खाने को फ़लस्तीन के सफारत खाने में तब्दील कर दिया और उसके बाद जुमतुल विदा को आलमी यौमुल कुद्स करार दिया, तो इस मामले ने वो जो मसले फ़लस्तीन को दबाने की जो कोशिशें और साजिशें हो रही थी जिसमें हमारे बाज मुस्लिम ममालिक भी शरीक थे, उसको काफी हद तक न सिर्फ ये डिले कर दिया बल्कि मसले फलस्तीन को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। खास तौर पर आलमी यौमुल कुद्स ही को ले लीजिए। आलमी यौमुल कुद्स ईरान से शुरू हुआ, सबसे पहले ईरान के अंदर रहबर इनकलाब इस्लामी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर पूरे ईरान में मुजाहरे शुरू हुए जुमतुल विदा को, और उसके बाद ये देखते ही सिलसिला نہ صرف ایران تک محدود نہیں رہا بلکہ خطے کے تمام ممالک کے اندر پھیلتا چلا گیا. آپ ایشیا سے لے کر اور افریقہ تک چلے جائیے, تمام ممالک کے اندر یوم القدس ایک روایت بن چکی ہے اور ہر سال جمعۃ الوداع کو مسلمان قطع نظر اس کے کہ شاید بہت سے مسلمانوں کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈاک بیل ڈالی ہوئی ہے اس دن کی, لیکن وہ اس دن کو مناتے ہیں, اس دن سڑکوں پر آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں فلسطین کاز اور فلسطینی عوام اور ان کے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سوچ اور فکر دی تھی, چونکہ وہ خالصتاً یعنی یہ کہی کہ بہت ہی مخلصانہ ان کی فکر تھی, اس کے پیچھے نہ کوئی سیاست تھی نہ اس کے پیچھے کوئی اور جو ہے مالی یا دوسرے مفادات کار فرماتے, یہ خالصتاً دینی اور شرعی فریضہ سمجھتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مظلوم کی حمایت کا جو فریضہ ایک اسلامی مملکت پر عائد ہوتا ہے اس کی بنیاد پر چونکہ یہ حکم دیا تھا اور یہ فرمان جاری کیا تھا, تو اس کے اثرات جو ہیں پوری دنیا پر تیزی کے ساتھ پھیلتے چلے گئے. اور ہم نے دیکھا کہ آج جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم کو تقریباً 30 سے 38 برس کا عرصہ گزر رہا ہے, اس عرصے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پوری طرح سے ایک جا افتادہ جسے فارسی میں کہتے ہیں, یعنی ایک جو عالمی یوم القدس جو ہے وہ ایک روایت بن چکی ہے, مستحکم روایت بن چکی ہے کہ ہاں ماہ رمضان کا آخری جمعہ پوری دنیا کے مسلمان, حتیٰ کہ یورپی ممالک میں کہ جہاں چونکہ جمعے کی تعطیل نہیں ہوتی ہے تو وہاں کے رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ اتوار کے دن جو ہیں وہ آتے ہیں سڑکوں پر اور فلسطین کی حمایت میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں اور انہوں نے مسئلہ فلسطین کو نہ صرف یہ کہ سرد خانے میں ڈالے جانے کی اجازت نہیں دیے بلکہ مسئلہ فلسطین کو ایک بار پھر ایک عالمی جو ہے مسئلے کے طور پر پیش کیا ہے اور دنیا اس بات پر مجبور ہے سوچنے پر کہ مسئلہ فلسطین کا کوئی پائیدار حل, بلکہ نہ صرف یہ کہ پائیدار حل بلکہ منصفانہ حل ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ فلسطین کی جو سرزمین ہے وہ اس کے اصل باسیوں کو لوٹائی جائے. اور آج اسی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کاوشیں ہیں اور جو ان کی جو نظریاتی سوچ تھی, جو فکر تھی جو انہوں نے دی ہے, اس کا اثر ہے کہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ تحریک انتفاضہ جو ہے وہ زور پکڑ گئی ہے اور واپسی مارچ جو پچھلے 5 ہفتوں سے جاری ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شدت آتی جا رہی ہے اور نہ صرف یہ کہ شدت آ رہی ہے اور اس کا دائرہ کار صرف غزہ نہیں بلکہ حیفہ تک پہنچ گیا ہے کہ جو اسرائیل جس کے اوپر جس نے ناجائز قبضہ کر رکھے, یعنی مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا اثر جو ہے وہ نمایاں دکھائی دے رہا ہے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب مسئلہ فلسطین اپنے حقیقی شباب پر آئے گا اور اس کا پائیدار اور منصفانہ حق حل جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں برآمد ہوگا.
بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ.